हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 108। दूसरी तरफ नैना नकुल के बंगले के अंदर तो आ जाती है, लेकिन इतना बड़ा भव्य और सुंदर बना हुआ बंगला और उसकी डिजाइन्स देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और उसने कभी भी कोई इतना खूबसूरत और शानदार बनाव किसी के रहने का घर तो बिल्कुल नहीं देखा था। इसीलिए वो काफी ज्यादा हैरानी से टकटकी लगाकर उस घर को काफी ज्यादा ध्यान से देखती रहती है और उसे ऐसा लगता है जैसे वो कोई सपना देख रही है। और उसका सपना ये तब टूटता है जब अक्षत भी उसके आने के कुछ मिनट बाद ही घर के अंदर आ जाता है और उसे इस तरह दरवाजे के थोड़ा सा अंदर ही खड़ा देखकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या हुआ, ऐसे यहाँ पर ही क्यों खड़ी हो अभी तक? अक्षत के इस तरह कंधे पर हाथ रखकर ये बात बोलने से नैना, जो कि उस घर को देखने में इतनी ज्यादा ध्यानमग्न होती है, थोड़ा सा चौंक जाती है, इस तरह से जैसे कि सच में किसी सपने से ही बाहर आई हो। हाँ हाँ, ओ तुम वहाँ पर। अपने पीछे अक्षत को खड़ा देख नैना की सांस में सांस आती है और वो राहत की सांस लेते हुए बोलती है, हाँ मैं, और कौन होगा, मेरा घर है तो मैं ही होऊंगा ना। वैसे तुम अब तक जहाँ पर खड़ी क्या सोच रही थी? नैना के इस रिएक्शन पर अक्षत को सामने पड़े सोफे पर काफी आराम से फैल कर बैठते हुए नैना की तरफ देख कर पूछता है, वो मैं बस ये सोच रही थी, मुझे, मेरा मतलब है, मुझे पता नहीं ना कि किस तरफ जाना है, मुझे तो बस वही। नैना एकदम गड़बड़ाती हुई सी अक्षत की बात का जवाब देते हुए बोलती है, क्योंकि असल में तो उसके घर की सुंदरता और खूबसूरती ही देख रही थी। अच्छा, मुझे लगा शायद। नैना की बात सुनकर अक्षत एकदम से ही बोलता है और फिर कुछ बोलते बोलते रुक जाता है और अपने घर के नौकरों और केयरटेकर को आवाज़ लगाकर वहाँ पर बुलाता है और नैना का सामान ले जाकर गेस्ट रूम में रखने को बोलता है और उसकी साफ सफाई अच्छी से करने को भी बोलता है। तो अक्षत की बात सुनकर नाकर नैना की तरफ ही देखने लगता है। तो अक्षत की बात सुनकर और नौकर को इस तरह खुद की तरफ देखते हुए पाकर नैना बोलती है, मेरे पास कहाँ कोई भी सामान है, मेरा तो सारा सामान वहाँ उस होटल, नहीं उस गाड़ी में ही रह गया जिसमें मुझे वहाँ होटल तक ले गए थे। नैना के ये बात बोलते ही अक्षत नौकर को वहाँ से चले जाने का इशारा करता है और नैना की तरफ देखते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम मुझे बता सकती हो तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो मैं अरेंज करवा दूंगा, वैसे तुम करती क्या हो? अक्षत की बात सुनकर नैना भी आकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठ जाती है और उसे अपने बारे में बताने लगती है, क्योंकि अब अक्षत उसकी मदद कर रहा था तो नैना को उससे कोई भी बात छुपाना ठीक नहीं लगा, इसीलिए ही उसने अपने मॉडल होने की बात और किस तरह वो वहाँ उस होटल में पहुँची वो सब भी नैना ने उसे बता दिया। और अक्षत बड़े ही ध्यान से उसकी पूरी कहानी सुन रहा था, बिल्कुल इस तरह जैसे कि किसी बड़ी फिल्म की स्क्रिप्ट सुन रहा हो। सुनैना नोटिस करती है कि अपने पास्ट के बारे में बात करते वक्त आदित्य की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, घबराहट की वजह से उसे पसीना आने लगता है और उसके हाथ पैर भी कांपने लगते हैं, और ऐसा ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और ज्यादातर नशे में ही रहते हैं, और जब वो नशे में नहीं रहते हैं उस वक्त पिछली बातों को याद करके या किसी ऐसी याद को सोचने के बारे में जो उन्हें तकलीफ देती हो उन्हें ये सब होता है। और सुनैना को ये सब कुछ पता था, इसीलिए ही वो आदित्य से आगे इस बारे में और कुछ बात नहीं करती, ना ही उससे जबरदस्ती पूरी बात एक साथ ही बताने की कोई जिद करती है, बल्कि वो उसका हाथ पकड़कर और उसे अपने गले लगाकर संभालने और शांत करने की कोशिश करती है। तो सुनैना के गले लगने पर आदित्य को काफी अच्छा फील होता है, उसे किसी अपने के इतना करीब होने का एहसास होता है क्योंकि वो सुनैना से प्यार भी करता है। तो इन सब के बीच वो उसे कभी छोड़कर ना जाने का प्रॉमिस करने को कहता है और सुनैना भी उससे कह देती है, हाँ मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो ये सुनकर आदित्य थोड़ा सा खुश हो जाता है और फिर कुछ देर बाद वो दोनों उस कमरे से निकल आते हैं जहाँ पर आदित्य के पापा की तस्वीर लगी होती है, क्योंकि उस कमरे में रहने से आदित्य काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था और सुनैना ये बात भी नोटिस कर रही थी। आदित्य सुनैना को लेकर उसी घर के एक दूसरे कमरे में आता है और फिर उसे वहाँ पर छोड़कर कहीं चला जाता है। सुनैना आदित्य का इंतजार करते हुए कमरे में इधर उधर टहलती है और कुछ ढूंढने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उस कमरे में किसी का भी कोई पर्सनल सामान नहीं होता तो सुनैना को ऐसा कुछ नहीं मिलता वहाँ से जिससे कि उसे आदित्य के बारे में और कुछ भी पता चल पाए। का हुआ, कुछ ढूंढ रही हो का बिटिया, हम कुछ मदद करेगा? एक आदमी की गंभीर और नर्म आवाज दरवाजे की तरफ से आती है। तो सुनैना, जो कि अपने बेड के पास वाला एक ड्रॉर खोलकर उसमें ही कुछ ढूंढ रही थी, वो जल्दी से मुड़कर उस तरफ ही देखती है क्योंकि वो आवाज आदित्य की नहीं थी तो सुनैना थोड़ा सा चौंक जाती है। सुनैना अपने सामने की तरफ देखती है तो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने सफ़ेद बालों वाले एक लगभग 60 वर्षीय आदमी मुस्कुराते हुए दरवाजे पर खड़े उसकी तरफ देखते हुए कमरे के अंदर ही आ रहे थे। उनके चेहरे पर काफ़ी नरमी और अपनेपन के भाव थे। आप कौन हैं? एक मिनट, मैंने शायद आपको शादी वाले दिन भी देखा था। आप यहाँ पर ही रहते हैं क्या? उस आदमी की बात सुनकर और उसकी तरफ देखते हुए सुनैना थोड़ा सा याद करते हुए उनसे पूछती है, नहीं, हम यहाँ रहते तो नहीं हैं, लेकिन काम करते हैं यहाँ। रहते हम वहाँ सर्वेंट क्वार्टर में हैं। और तुम्हारे हाथ में कहाँ हुआ बिटिया? वो आदमी अपने बारे में बताता हुआ बोलता है तो सुनैना समझ जाती है कि वो यहाँ पर काम करने वाले हैं। ये तो कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, अभी तो काफ़ी दिन हो गए हैं। अच्छा, तो क्या मैं आपको काका बुला सकती हूँ? सुनैना भी उनकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए पूछती है। हाँ बिल्कुल बेटिया, तुम काका चाचा कुछ भी बुलाकत हो, वैसे हमारा नाम भवानी प्रसाद है तो सब हमका भवानी काका बुलावत है। बाकी यहाँ ज्यादा कोई आता नहीं और आदित्य बेटा तो कोई से बात भी नहीं करते हैं। वैसे तुम कहाँ खोज रही थी यहाँ? भवानी काका सुनैना की बात का जवाब देते हुए ये सब बात सुनैना से बताते हैं और उससे फिर पूछने लगते हैं। सुनैना को उनके इस तरह पूछने पर कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता कि आखिर वो यहाँ पर इस कमरे में ढूंढ जा रही थी। तभी इधर उधर देखते हुए उसकी नज़र अपने मोबाइल फ़ोन पर पड़ती है तो अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन उठाते हुए वो बहाना बनाते हुए काका से बोलती है, वो मोबाइल, मेरे मोबाइल फ़ोन में बैटरी काफ़ी कम हो गई है तो बस वही चार्जर ढूंढ रही थी मैं, मुझे लगा यहाँ पर होगा शायद लेकिन मुझे नहीं मिला। अच्छा ठीक है, हम लाकर देते हैं। और इतना बोलकर भवानी काका वहाँ से जाने लगते हैं। तब तक आदित्य वहाँ पर आ जाता है और भवानी काका और सुनैना को बात करते देखकर अपने मन में सोचता है कि वो क्या बोले और फिर वहाँ पर आते हुए बोलता है, और भवानी काका कैसे हैं आप? सुनैना से मिल लिया आपने, जानते तो हैं ही इसे। हम ठीक हैं आदित्य बेटा, तुम बताओ, और बिटिया को तो हम जानते हैं, तुम्हारी पत्नी है। आदित्य की बात सुनकर भवानी काका इतना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं
और आदित्य सुनैना की तरफ ही बढ़ने लगता है। सुनैना भी थोड़ा सा एक्साइटेड होकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलती है, काका तो बहुत ही अच्छे हैं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं मिलवाया उनसे? लेकिन आदित्य की तरफ आते हुए उसकी सारी एक्साइटमेंट और खुशी नाराज़गी और गुस्से में बदल जाती है और वो उसी तरह डिसअपॉइंट होकर आदित्य की तरफ देखते हुए बोलती है, अच्छा तो ड्रिंक करने के लिए गए थे तुम? ये था तुम्हारा 2 मिनट में वापस आना। पता है तुम्हें आदि, आज मैं कितनी खुश थी। हमारी शादी के बाद से शायद आज ये पहली सुबह होगी जब तुम नशे में नहीं थे। लेकिन नहीं, तुम कहाँ, इतनी देर बहुत रह लिए बिना शराब के। इतना बोलकर सुनैना नाराज होते हुए अपने कदम पीछे कर लेती है और आदित्य की तरफ से मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। वो इस वक्त सच में आदित्य से काफी ज्यादा नाराज थी। अरे नहीं सोना, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैं ड्रिंक करने के लिए नहीं गया था। सुनैना को इस तरह से नाराज होता देख आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ आदित्य उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, क्रमशः वैसे नाराज होने वाली बात है या नहीं? यूं कमरे में सुनैना को अकेला छोड़कर आदित्य का ड्रिंक करने के लिए चले जाना। और अब क्या लगता है आप सबको, सुनैना क्या शर्त रखेगी आदित्य के सामने और क्या होने वाला है नैना और अक्षत की लाइफ में? जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी से और पढ़ते रहिए ये कहानी और इसके सारी भाग। क्योंकि और भी बहुत कुछ पता चलेगा, अब भवानी काका भी है ना आप कहानी में।